अध्याय 62 छटनी का समय। प्रेरित भाइयों को दिलासा देता है और कहता है अंत में, हे मेरे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो रहो। ईश्वर के संपूर्ण हथियार बांध लो जिसमें तुम खड़े रह सको। आह, हमारे सामने कैसा गंभीर समय है। जो लोग परमेश्वर की संतान होने का दावा करते हैं उनके बीच कैसी छटनी होगी। अन्यायी न्यायियों के बीच में पाए जाएंगे। जिनके पास विशाल ज्योति है और उसमें चले नहीं है, उन पर उसी प्रकाश की समानता का अंधकार भी छा जाएगा जिसको उन्होंने तुच्छ जाना था। पौलुस के वचनों में जो पाठ लाया जाता है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। परंतु मैं अपने देह को ताड़ना करके वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि औरों को उपदेश दे के आप ही किसी रीति से निकृष्ट बनूं। शत्रु यथाशक्ति कोशिश कर रहा है और शीघ्र ही हरेक व्यक्ति का अनंत काल के लिए निर्णय हो जावेगा। जिनके कार्य इस प्रकाश के अनुकूल होंगे जो ईश्वर कृपा से दिया गया है, उनकी गिनती परमेश्वर की ओर की जाएगी। परंतु मंडली की शुद्धि के दिन शीघ्रता से आ रहे हैं। परमेश्वर के पास एक पवित्र और सच्चे लोग होंगे। उस विशाल छटनी में जो शीघ्र ही होने वाली है, हम इज़राइल की सामर्थ को नापने के योग्य होंगे। लक्षणादि प्रकाशित कर रहे हैं कि वो समय सन्निकट है जब वो प्रकट करेगा कि उसका छाज उसके हाथ में है, और उस समय वो अपने खलिहान को अच्छी तरह साफ करेगा। छुटकारे के अन्वेषकों के लिए विजय। मुझे परमेश्वर के लोगों का दृश्य दिखलाया गया तो क्या देखती हूं कि वे जोर से हिलाए गए। कुछ लोग दृढ़ विश्वास और दुखमय विलाप के साथ परमेश्वर से गिड़गिड़ा रहे थे। कुछ ऐसे थे जिन्होंने दुखी होकर प्रार्थना में भाग नहीं लिया। वे उदासीन तथा बेपरवाह प्रतीत होते थे। वे अपने इर्द गिर्द के उस अंधकार का मुकाबला नहीं कर रहे थे और इससे वे घने बादल में घिर गए। परमेश्वर के दूतों ने इनको छोड़ दिया और मैंने देखा कि वे उनकी मदद को दौड़े हुए जा रहे जो दुष्ट दूतों का मुकाबला जी जान से कर रहे थे और परमेश्वर को धीरज के साथ पुकार कर स्वयं अपनी मदद कर रहे हैं। परंतु स्वर्गदूतों ने उनको छोड़ दिया जो स्वयं अपनी मदद नहीं कर रहे थे, और वे फिर मेरी आंखों से ओझल हो गए। जब प्रार्थना करने वाले अपनी उत्साहपूर्ण पुकार में व्यस्त थे तो यीशु की ओर से प्रकाश की किरण कभी कभी आती और उनके हृदयों को प्रोत्साहित करती और चेहरों को दमकाती थी। मैंने दृश्य में देखी हुई छटनी का अर्थ पूछा और मुझे बतलाया गया कि ये लाओदिकेया के सच्चे साक्षी की सलाह द्वारा उपस्थित की हुई खरी खरी गवाही के सबब से पैदा होगी। इससे ग्रहण करने वाले के हृदय पर प्रभाव पड़ेगा और स्तर ऊंचा किया जाएगा और खरे सत्य का प्रचार किया जाएगा। कुछ लोग इस खरी खरी साक्षी का सहन न करेंगे, वे उसके विरुद्ध उठेंगे, जिससे परमेश्वर के लोगों में छटनी शुरू हो जाएगी। सच्चे साक्षी की गवाही के आधे पर भी ध्यान नहीं दिया गया। जिस गंभीर साक्षी पर मंडली का भाग्य लटका हुआ है उसका सामान्य ही रीति से आदर किया गया, यद्यपि पूर्णतः तिरस्कार नहीं किया गया। इस साक्षी द्वारा पूर्ण पश्चाताप होना चाहिए और जो लोग इसे सच्चे मन से स्वीकार करेंगे वे उसका पालन करें और शुद्ध होंगे। दूत ने कहा, सुनो तुरंत। मैंने एक शब्द सुना जिसको ध्वनि बहुत से संगीत की, सो बाजों भी और सब के सब मीठी एक स्वर की राग के थे। जो संगीत मैंने अब तक सुना था ये उन सबसे बढ़िया व उत्तम था। वो दया, करुणा तथा समुन्नत पवित्र आनंद से परिपूर्ण था। उसने मेरे सारे व्यक्तित्व में सनसनी पैदा कर दी। दूत ने कहा, देखो। फिर मेरा ध्यान उन दलों की ओर आकर्षित किया गया जिनकी जोर के साथ छटनी हुई थी। मुझे वे लोग भी दिखलाए गए जिन्हें मैंने पहले रोते हुए और आत्मा में दुखी होकर प्रार्थना करते देखा था। उनके इर्द गिर्द के रक्षक दूतों का बल दो गुना किया गया था, जो सिर से पैर तक कवच पहने हुए थे। वे नियमानुसार सिपाहियों के दल की भांति दृढ़ता से चलते थे। उनके चेहरों पर कठोर संघर्ष के जो उन्होंने सहे थे तथा दुखमय संग्राम के जिनमें होके वे गुजरे थे लक्षण दिखाई देते थे। तो भी उनकी शक्लें जिन पर भारी आंतरिक दुख के चिन्ह दिखाई देते थे अब स्वर्ग के प्रकाश व महिमा से चमकने लगीं। उनको विजय प्राप्त हो चुकी और अब उनसे अगाध कृतज्ञता तथा पवित्र आनंद की मांग की जाती है। इस दल की गिनती कम हो गई। उनमें से कुछ तो छटनी में गए और मार्ग में रह गए। देखो प्रकाशित वाक्य 3:15-17। बेपरवाहों तथा उदासीनों ने जो उनके संग सम्मिलित नहीं हुए थे, जिन्होंने विजय और त्राण की कद्र की थी, कि धीरज के साथ उसके लिए दुख उठाया था, उसे प्राप्त नहीं किया, तो वे अंधकार में छोड़ दिए गए। परंतु उनकी कमी तुरंत दूसरों से पूरी की गई, जिन्होंने सत्य को ग्रहण किया था और उस श्रेणी में शामिल हुए थे। फिर भी दुष्ट दूत उनके निकट इकट्ठा हुए, परंतु उन पर उनका कोई वश न चला। देखो इफिसियों 6:12-18। जो कवच पहने हुए थे, मैंने उनको सत्य का सामर्थ्य के साथ प्रचार करते सुना, और उसका असर भी हुआ। मैंने उनको भी देखा जो बांधे गए थे। कुछ स्त्रियां उनके पतियों द्वारा बांधी गई, कुछ बालक माता पिता द्वारा बांधे गए। सच्चे लोगों ने सत्य को उत्साह के साथ स्वीकार किया, जिन्हें उसे सुनने से रोका गया था। उनसे नातेदारों का भय जाता रहा। उनके निकट तो सत्य की उच्चासीन था। सत्य उनको जीवन से अधिक प्यारा व कीमती था। वे तो सत्य के भूखे व प्यासे थे। मैंने पूछा, इतनी बड़ी तब्दीली का कारण क्या था? एक दूत ने उत्तर दिया, ये परमेश्वर के सामने से जीव को ठंडा करने वाली पिछली बारिश है। यही तीसरे दूत का ऊंचा स्वर है। इन चुने हुओं के संग बड़ी शक्ति थी। दूत ने कहा, देखो, मेरा ध्यान दुष्टों अथवा अविश्वासियों की ओर फेरा गया। उनमें हलचल मच गई। परमेश्वर के लोगों के जोश व सामर्थ्य से वे जाग उठे और क्रोध से भर गए। चारों ओर गड़बड़ी ही दिखाई देती थी। मैंने देखा कि उस दल से जिनमें शक्ति और प्रकाश था, कड़ा व्यवहार किया गया। उनके इर्द गिर्द गहरा अंधेरा छा गया। फिर भी परमेश्वर के गृहीत होकर और उसी पर भरोसा करके खड़े रहे। मैंने उनको व्याकुल देखा। फिर मैंने उनको उत्साह के साथ परमेश्वर को पुकारते सुना। दिन रात उनका चिल्लाना बंद न हुआ। देख लूका 18:7-8, प्रकाशित वाक्य 14:14-15। मैंने ये शब्द सुने, हे परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो। यदि इससे तेरी महिमा हो तो अपने लोगों के लिए छुटकारे की राह निकाल। हमें अपने चारों ओर के अन्य जातियों से छुटकारा दे। उन्होंने हमारे लिए मृत्यु के सामान उपस्थित किए हैं, परंतु तेरी भुजा त्राड़ दिला सकती है। यही शब्द मैं स्मरण कर सकती हूं। सबके ऊपर अपनी अयोग्यता की बड़ी भावना छाई हुई थी और परमेश्वर की इच्छा की पूर्ण अधीनता प्रकट की थी। तो भी याकूब की भांति सबके सब उत्साह के साथ विनती कर रहे तथा छुटकारे के निमित्त युद्ध कर रहे थे। उनकी उत्साहपूर्ण पुकार के शुरू होने के तुरंत ही बाद सहानुभूति के तौर पर स्वर्गदूत उनके छुटकारे के लिए जाने को थे, परंतु एक ऊंचे रोबीले दूत ने उनको रोक दिया। उसने कहा, परमेश्वर की इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है। उनको उस कटोरे में से पीना होगा। उनको वही बपतिस्मा लेना होगा। शीघ्र ही मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला डाला। देखो योएल 3:16, इब्रानियों 12:26 और प्रकाशित वाक्य 16:17। एक प्रचंड भूचाल आया। इमारतें हिलाई गईं जो चारों ओर गिर पड़ी। फिर मैंने विजय की एक ऊंची सुरीली और स्पष्ट ध्वनि सुनी। मैंने उस दल को देखा जो थोड़ी देर पहले बड़े संकट व बंधन में था। अब उनकी बंधुता ने पलटा खाया। एक प्रतापी प्रकाश उन पर चमका। वे उस समय कैसे सुंदर नजर आते थे। सारी थकान और चिंता के चिन्ह अंतर्धान हो गए। हर चेहरे पर स्वास्थ्य और सौंदर्य दृष्टिगोचर था। उनके शत्रु अर्थात उनके इर्द गिर्द के मूर्ति पूजक मृतक के समान गिर पड़े। वे उस प्रकाश को सहन न कर सकें जो धार पाए हुए पवित्र जनों पर चमकता था। ये प्रकाश व तेज उनके ऊपर उस समय तक रहा जब यीशु स्वर्ग के मेघों पर आते दिखाई दिया, और वो विश्वासी परीक्षित दल एक क्षण में पलक मारते ही महिमा से महिमा में बदल गए। कब्रें खुल गईं और धर्मजन अमृतत्व को पहने हुए उनमें से बाहर निकल आए और पुकारने लगे, मृत्यु और कब्र पर विजय। और जीवित धर्मी जनों के साथ वे अपने प्रभु से हवा में मुलाकात करने को उठाए गए, जबकि जय जय के सुरीले मीठे नारे हरेक अविनाशी जिह्वा से निकलने लगे। दो सेनाएं। दर्शन में मैंने दो सेनाओं को भयंकर संघर्ष से व्यस्त देखा। एक सेना का नेतृत्व संसार के बिल्ले वाले झंडे कर रहे थे और दूसरी सेना का नेतृत्व राजकुमार इम्मैनुअल के रक्त में सना हुआ ध्वज कर रहा था। झंडे के झंडे गर्त में छोड़ दिए जा रहे थे जब परमेश्वर की सेना से दल के दल शत्रु के साथ मिल जा रहे थे, और जातियां शत्रु की श्रेणी से परमेश्वर की पालकों के साथ मिल जा रही थीं। स्वर्ग के बीच एक उड़ते हुए दूत ने इम्मानुएल का झंडा बहुतों के हाथ में दिया और एक शक्तिशाली सेनापति ऊंचे स्वर से बोला, पंक्ति में खड़े हो जाइए, जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं के और मसीह की साक्षी के आज्ञाकारी हैं, अब अपना अपना स्थान ले लें। उनके बीच में से निकलो और अलग हो जाओ, और वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां होगे। जो परमेश्वर की मदद के लिए आना चाहें आवें, सामर्थ की विरुद्ध परमेश्वर की सहायता को चले आवें। इस समय मंडली युद्धरत है। इस समय हम आधी रात की अंधियारी में डूबे हुए संसार के मुंह दर मुंडे खड़े हैं, जो मूर्ति पूजा का आदि हो गया है। परंतु वो दिन आ रहा है जिसमें युद्ध लड़ा जाएगा और विजय प्राप्त होगी। परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर पूरी होगी जिस तरह स्वर्ग में पूरी होती है। तब राष्ट्रगण सिवाय स्वर्गीय व्यवस्था के किसी और व्यवस्था को न अपनाएंगे। सब लोग एक सुखी संयुक्त परिवार होंगे जो यश और कृतज्ञता के मसीह की धार्मिकता का वस्त्र ओढ़े हुए होंगे। प्रकृति अपने उत्कृष्ट सौंदर्य में परमेश्वर को निरंतर प्रशंसा व भक्ति की श्रद्धांजलि देती रहेगी। संसार स्वर्ग के प्रकाश से स्नान करेगा। वर्ष आनंद से गुजरते जाएंगे। चंद्रमा का प्रकाश सूर्य जैसा हो जाएगा और सूर्य का प्रकाश अब से 7 गुना तेज हो जाएगा। इस दृश्य पर भोर के तारे मिलकर एक साथ गाएंगे और परमेश्वर के पुत्र खुशी के मारे चिल्लाएंगे, और परमेश्वर और मसीह मिलकर घोषित करेंगे, फिर पाप न होगा और न मृत्यु होगी। ये वो दृश्य है जो मुझे दिखाया गया। परंतु कलीसिया को दृश्य तथा अदृश्य शत्रुओं से अवश्य ही लड़ना है। शैतान के प्रतिनिधि मानव चोले में भूमि पर हैं। मनुष्यों ने संगठन किया है कि सेनाओं के प्रभु से विरोध करें। ये गुटबंदियां तब तक जारी रहेंगी जब तक मसीह प्रायश्चित के सामने से मध्यस्थ का पद छोड़कर बदला लेने का वस्त्र न पहन ले। शैतान के गुमाश्ते हर नगर में परमेश्वर की व्यवस्था के विरोधियों की पार्टियां बनाने में व्यस्त हैं। नाम मात्र के धर्मी जन और घोषित अविश्वासी इन दलों के साथ सम्मिलित होंगे। ये ऐसा समय नहीं कि परमेश्वर के लोग दुर्बल हो जाएं। हम एक क्षण भी लापरवाह नहीं रह सकते।